रही थी एंड आई कैन इवन इसका भी मैं आपको डेट पढ़ देती हूँ कि किस डेट का है। ये है 11-17 अप्रैल 2005, अप्रैल के महीने का ये अखबार है जहाँ है हम महंगाई का रोना रोते हैं। आप देखिए ये एक दो आर्टिकल एक मैंने मुस्तनसर हुसैन तारर का आर्टिकल पढ़ना, एक छोटी सी कहानी है। राइटर कहते हैं कि आज सुबह जब मैं सौदा खरीदने के लिए बाजार गया तो एक छोटा सा लड़का शॉपिंग बैग हाथ में लिए मेरे सामने आया। ये बड़े गौर से सुनने की है, इसकी दो तीन बातें बड़ी कमाल की हैं। कहते हैं कि लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, भाईजान ये ले लो। मैंने कहा, मैं ये लिफाफा लेकर क्या करूंगा? तो उसने कहा, जब आप सौदा खरीदेंगे तो आप इस लिफाफे में डाल दीजिएगा। मैं हैरान होकर उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सौदा खरीदने आया हूं? तो उस लड़के ने जवाब दिया, वाह ये क्या कह रहे हो, हम तो लिफाफा देखकर मजमून भांप लिया करते होते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा है जो इन साहब से जो कि एडल्ट है उनसे बात कर रहा, और ये हकीकत में शॉपिंग करने ही जा रहे थे। साहब कहते हैं कि मैंने कहा, वाह भाई तुम तो बहुत जहीन हो, तुम्हें तो किसी स्कूल में जाना चाहिए, तुम ये शॉपिंग बैग क्यों बेच रहे हो? लड़के ने कहा, हम गरीब लोग पढ़कर भी ये मजदूरी करेंगे, हम अफसर थोड़ी बनेंगे, और आजकल के हमारे इन स्कूलों में तो ये बाजार हमारे स्कूल। अब ये 2005 का मैगजीन है जिसमें से मैं ये आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रही हूं। उस जमाने में बच्चा कह रहा है कि हमारे स्कूलों से तो ये बाजार बेहतर हैं, यहां जो कुछ मैंने सीखा सारी उम्र स्कूल में नहीं पढ़ सकता। साहब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, अच्छा तो फिर? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि पढ़ने से तो इंसान बुजदिल बन जाता है। मैंने पूछा, वो कैसे? तो लड़के ने जवाब कहा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप जरा जाके बाजार का चक्कर लगा के आइएगा, दुकानदारों से चीजों की कीमतें जरा पता करें। ये साहब जो अपने घर से शॉपिंग करने निकले थे, उन्होंने कहा कि मैंने सर हिलाकर जेब से एक रुपया निकाला, इस लड़के को दिया और मैंने शॉपिंग बैग उसके हाथ से ले लिया। अब वो कहते हैं कि मैंने उस लड़के को कुछ कहना चाहा, बात गौर से सुनने की है, कहते हैं कि मैंने उस लड़के को कुछ कहना चाहा लेकिन लड़के ने मुझे मना कर दिया, ना 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 और कुछ मत कहिएगा, नसीहत मत कीजिएगा, और नसीहत मत कीजिएगा। मैंने उस लड़के से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमको नसीहत करने लगा हूं? कहता, हाँ हाँ आप जब सारी बातचीत के बाद कुछ कहने लगे थे तो मुझे यकीन है कि अक्सर औकात लोग नसीहतें करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि तुम जब भी छोटे हो तुम बड़े होगे, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको बड़ों का अदब करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए वो करने। तो बच्चा कहने लगा कि मैं आपको बताता हूं, दुनिया में नसीहत से बेकार और कोई चीज नहीं है। ये साहब जो बड़े सारे थे कहने लगे, मैंने कहा वो कैसे? तो बच्चे ने कहा, देखिए साहब जो जहीन और काबिल लोग होते हैं, जो सेटल्ड लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको तो नसीहत की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नसीहत की जरूरत नहीं। और वो शख्स जो नालायक होता है, आप उसके सामने लाख बीन बजाते रहें उस पर बीन असर ही नहीं करेगी, यानी आप उसको लाख नसीहतें करते जाए उस पर नसीहत वैसे ही असर नहीं करेगी। अब ये बड़ा सारा आदमी था कहने लगा, मैं उसकी बातों पर गौर करता चला गया और वो लड़का एक रुपया लिया और आगे चलता बना। ये साहब कहते हैं कि मैं इन्हीं सोचों में डूबा सब्जी मंडी की तरफ चलने लगा। अब ये बात अगली भी गौर करने की है, हम आज महंगाई को रोते हैं ना, ये 2005 अप्रैल 2005 का मैगजीन है जो मैं आपके साथ 15 साल पीछे आप चले जाइएगा। साहब कहते हैं कि सब्जी मंडी की तरफ चलने लगा, सब्जी मंडी के करीब पहुंचकर मैं रुक गया, कसाई की दुकान की तरफ हसरत भरी निगाह से देखा। क्यों? क्योंकि गोश्त की कीमत उस जमाने में भी बहुत ज्यादा थी और बहुत से लोग उस जमाने में भी गोश्त नहीं खरीद पाते थे। जब मैंने उसके हाथ में छुरी देखी और पीछे आवेजान रखनामा पढ़ा तो उसके करीब जाने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मैं वो गोश्त मेरी बसात से बाहर था, मैं नहीं खरीद सकता था। खैर कहते मैं वहां से चलने लगा और सब्जी मंडी की पहली दुकान से शुरू होकर बारी बारी हर दुकान से स्पेशल मजिस्ट्रेट की तरह चीजों की कीमत पूछता और आगे निकल जाता। जिस चीज की भी कीमत पूछता, टमाटर की कीमत की तरह आसमान से हर चीज, सब्जी हर सब्जी की कीमत आसमान से बातें करती थी, और मैं एशिया की बढ़ती हुई कीमतों की तरह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार जब मैं दूसरे गेट से खाली हाथ, न मैं गोश्त खरीद पाया न मैं कोई सब्जी खरीद पाया, जब दूसरी तरफ से मैं खाली हाथ बाहर निकला तो मुझे उस लड़के की बातें याद आने लगी। जिसने मुझे ये शॉपिंग बैग दिया था एक रुपए में। मैंने उस खाली शॉपिंग बैग की खाली खाली नजरों से देखा और हाथ में पकड़े घर की तरफ चलने लगा। अब कहने की बात यह कि बहुत से लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में चीजें मंगाई हो गई, मंगाई हो गई, मंगाई हो गई, मंगाई हो गई। ये 2005 का अखबार है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए एक और। अब ठेका हम कहते हैं जी, वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी अपनी पीढ़ी के नीचे कोई सोटा ही नहीं फेरता। Isn't it strange? Yes, it is strange. ये आर्टिकल जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी उसको भी गौर से सुनने की बात है। उसके बाद मैंने आपके साथ गाना टॉप ऑफ द आवर ले लेते हैं। पहले टॉप ऑफ द आवर के बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। ये कारवाने सराय के नाम से, कारवाने सराय के नाम से एक आर्टिकल आया करता होता था। एक आर्टिकल्स का एक सिलसिला था जो मुस्तनसर हुसैन तारड़ इसको लिखा करते होते थे। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, हम और हमारा पाकिस्तान, गौर से सुनने की है। और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो हर चीज के लिए मुर्दे इल्जाम दूसरे। आई हैव कम अक्रॉस मैनी पीपल लाइक दिस। उनसे कोई बात भी करो ना तो अगर वो पढ़ते नहीं है तो वो कहते हैं हाँ मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो है। दे ऑलवेज लुक एट द एवरेज, दे डोंट लुक एट देर आर सम गुड पीपल। जो चोरी करता है वो ये कहता है मैं तो चोरी नहीं करता, सारे ही चोरी करते हैं, मुझे घर चलाने के लिए मुझे करनी पड़ती है। नोबडी इज रेडी टू इंक्लूडिंग मी, हम में से कोई भी शख्स अपने से शुरू नहीं करता। हालांकि जिंदगी में हर चीज वहां से शुरू होती है जहां पे मैं खड़ी हूं। यानी अगर मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी, सही कर लूंगी तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। चंद टॉप ऑफ द आवर, उसके बाद वापस आते हैं। हमारे प्रोग्राम को तावुन दिया है कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस ने भी, और ये मिसेस ब्रैम्पटन में है, स्टीव्स एंड रदरफोर्ड के इंटरसेक्शन पे ओपन है। आप अपने घर की शॉपिंग के लिए फर्नीचर हो या आर्टवर्क हो या फिर अपने कार्पेट्स लेने हैं तो आप एक दफा जरूर विजिट कीजिएगा। इवन अगर आपको अप्लायंसेस भी चाहिए, यू पिक अप एनीथिंग, दे विल बीट एनी प्राइस, और कंपेयर आप प्राइसेस को कर सकते हैं। कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस पे तशरीफ लेके जाएं। टॉप ऑफ द आवर विल कम बैक विद दिस ब्यूटिफुल आर्टिकल।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
पूरे ऑन्टारियो में लाखों लोग अपनी कोविड 19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा वैक्सीन अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर दस्तियाब हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। हुकूमत ऑन्टेरियो की तरफ से अदायगी की गई।
Rogue, fast, affordable, reliable residential and business internet. Unlimited internet only for $39.99. No annual contract, no modem rental fee. Worry-free internet and savings are just click away. Sign up today with gorogue.ca, GOROGUE.ca or call 647-273-3291, 647-273-3291.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
कोविड 19 करके सारा काम ऑनलाइन हो गया, ग्रोसरी ऑनलाइन हो गई, ट्यूशन ऑनलाइन हो गई, और ता होर कल मेनू रिया ने दसिया कि सोडी फर्नीचर वाले भी हुन ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक सुनिया, ते हुन इना दा स्टोर भी खुल गया है।
ब्रैम्पटन दे सब तो वड्डे फर्नीचर स्टोर्स विचो एक सोडी फर्नीचर ते हुन कोविड 19 दे दौरान इना दी वेबसाइट sodifurniture.com ते जाओ अते अपनी पसंद दा फर्नीचर सिलेक्ट करो। स्टोर विच आके सेम फर्नीचर देखो अते सेम प्राइस ते लो। इना दी कैनेडी लोकेशन हुन खुल चुकी है। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 9058747171।
Akal Truck and Loom.
Tade truck badshah di quality service repair, oil change, wash te maintenance.
Ek hor khush khabri.
North American, Chinese te Korean nave te istemal shuda tires with full warranty.
Akal Truck and Loom. 1776 Mearside Drive, 905-565-1100.
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दीक ऑल द सॉल्यूशन पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80% मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं पुरसकून जिंदगी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए
10 जगह क्यों एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स
फातिमा ग्रोसर्स
जी हाँ फातिमा ग्रोसर्स मसाले ताज़ा सब्जियाँ फल हलाल गोश्त मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000 फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त
अजीत सुनते हो
अब कह भी दो
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब
अब कुछ कहना वहना नहीं है बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन नो ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर कॉल शिराज 416-792-8792
रिंगिंग बजिंग हिसिंग टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
جی سب ایک تو پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں آپ کو میرا ذکر سے پہلے آپ کو گانا سناؤں چیزیں ہی الٹی پلٹی ہو گئی میں سوچ رہی تھی ایک غزل میں نے سنی میرا خیال ہے پنکج اداس تھا ان کا نام انڈیا کے بہت اچھے ایک تھے جو غزل گانے والے پنکج اداس انہوں نے یہ غزل گائی تھی وہ ہے اب میں سوچتی ہوں کہ یہ تو ہونی چاہیے سونے جیسا رنگ ہے تیرا چاندی جیسے بال کیونکہ جب انسان خاص طور پہ دیسیوں کا ذکر کریں چاہے وہ پاکستان سے ہو چاہے وہ انڈیا سے ہو تو رنگ تو گند بھی ہوتا ہے نا سونے جیسا رنگ ہے تیرا چاند اور بال کیا ہو سکتے ہیں سفید ہو سکتے ہیں مگر یہ گانا بھی الٹا ہے انہوں نے کہا چاندی جیسا رنگ ہے تیرا سونے جیسا اب مجھے آپ بتائیں انڈیا اور پاکستان میں کتنی گوریاں موجود ہیں جن کا چاندی جیسا رنگ اور لال رنگ کے بال ہوں مگر مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے گوریوں سے متاثر ہو کے یہ لگایا ایک غزل سنیے گا اس کے بعد واپس آتی ہوں پروگرام میں پنکج اداس کی یہ غزل ہے اس کے بعد آپ کو لے کر کے چلوں گی جناب مستنصر حسین کیا لکھتے ہیں اور کہاں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے یا مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے ٹھیک پہلے سنیے غزل سونے جیسا رنگ ہے تیرا میرے دل میں تو یہی ہے سونے جیسا رنگ ہے تیرا چاندی جیسے بال ٹھیک ہے مگر پنکج اداس کہتے ہیں چاندی جیسا رنگ ہے تیرا سونے جیسا بال مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے بتائیے گا ضرور انجوائے
سونے جیسے بال चांदी जैसा रंग है तेरा जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल चांदी गोरी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए तू जिसको मिल जाए वो जिसको मिल जाए वो हो जाए माला मान एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल क्या क्या रंग जमाते लोग जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग नजरें भर भर देखें तुझको आते जाते लोग छल छबीली रानी थोड़ा छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल
अच्छा लगा गाना हालांकि ये गाना उल्टा है होना ये चाहता चांदी जैसा सोने जैसा रंग है तेरा चांदी जैसे बार आज जरा देखिएगा आप अपनी अम्मी के चेहरे के ऊपर लाइट डाल के देखिएगा तो आपकी अम्मी का चेहरा गंदमी रंग ऑफ कोर्स गंदमी रंग गोल्डन कलर एंड बाल तो फिर सफ़ेद ही हुई जाए करते होते हैं ना तजुर्बे के साथ आखिर वो हमारी अम्मी क्या करती थी तो पुजनी चिटे बॉल की थे मैं एनीवेज एक और आपको लेके हारमनी आई लव यू आई वॉज रीडिंग योर आई वॉज लुकिंग एट योर रिमार्क्स यू आर सो स्वीट वो भी हमारे साथ आए थे ना सैफुल्ला खालिद साहब तो उन्होंने ऐसे करके किया था वो कहती हैं सर यू नीड सिप ऑफ वाटर व्हेन यू क्लियर योर थ्रोट यू स्केयर्ड माय किड्स आई लव यू हारमनी आई लव यू एंड यू नो व्हाट आई लव एवरीबॉडी एनीवेज एक जो आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर करना है मुस्तनसर हुसैन तारड़ की तहरीर अगेन ये आज की बात नहीं है गो बैक 15 ईयर्स 15 साल पीछे आप चले जाइए एंड आई कैन शेयर यू द डेट ऑन दिस एंड दैट वाज 15 से 21 अगस्त सन 2005 اگست کے مہینے کا یہ میگزین ہے جس میں کاروان سرائے میں آیا تھا. مجھے خود بھی ان دنوں میں اپنی بہن کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا. بعض اوقات جب ہم کمبائن فیملی سسٹم میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں, اٹ گیوز اس پیشنس, بہت کچھ سکھاتا ہے اکٹھا رہنا. جب ہم اکیلے رہنے کے عادی ہو جایا کرتے ہیں تو ہم شتر بے مہار ہو جایا کرتے ہیں, مگر جب ہم بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں, تو ہمیں ایک پیشنس ضرور سکھاتا ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ, یہ پچھلے کوئی دو ہفتے سے تین ہفتے کا اگر میں دورانیے کو دیکھوں تو اٹ واز اے بگ لیسن فار می کہ یس, بڑے کی بات کو کیسے سننا ہے, کیسے سمجھنا ہے, اور کیسے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. اٹ گیوز اس دیٹ ٹریننگ. کاروان سرائے میں مستنصر حسین, ون آف دا گریٹسٹ آرٹ رائٹر ان پاکستان, مستنصر حسین تارا لکھتے ہیں, محفلوں میں, پارکوں میں, بس اسٹینڈ پر, شادیوں میں آپ خاموش رہ کر کچھ دیر لوگوں کی گفتگو سنیں تو بیشتر اپنا اپنا رونا دھونا رو رہے ہوتے ہیں, شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, کسی سرکاری محکمے کو بخشا ہی نہیں جاتا, اور تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ ہم نے اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا. مجال ہے کہ یہ جو پاکستان کی برائی کر رہے ہیں ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو جس کا تحریک پاکستان سے دور کا بھی واسطہ ہو, اور یہ بیان ایسے دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان تو شاید صرف انہی کی کوششوں سے حاصل ہوا تھا. البتہ اس اکثریت میں ایک چھوٹی سی اقلیت بھی ہوتی ہے جو پاکستان میں پائے جانے والی تمام تر قباحتوں, مہنگائی, امن عامہ کی ہولناک صورتحال, بالائی طبقے اور سیاستدانوں کی کرپشن سے شاکی ہونے کے باوجود پاکستان کو مسلسل برا بھلا نہیں کہتے. یہ تعداد بے شک آٹے میں نمک کے برابر ہے, مگر ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو کہ پاکستان کو ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینڈ دس از ناٹ میرے خیالات نہیں ہیں, یہ مستنصر حسین تارڑ, جنہوں نے پوری دنیا کے مختلف ممالک میں سفر بھی کیا. میں ان کے سفر ناموں کو پڑھا, یعنی بہت سا تجربہ تھا ان کے پاس. لکھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو ہر لحاظ سے ڈیفینڈ کرتے ہوتے ہیں, اور چاہے وہ مہنگائی ہو, امن عامہ کی ہولناک صورتحال, سیاستدانوں کی کرپشن, آف کورس گلا شکوا ہوتا ہے, مگر ہمیشہ ان کو برا بھلا نہیں کہتے. اصرار کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اقتصادی طور پر, یعنی پاکستان نے اقتصادی طور پر ترقی بھی کی ہے. حکومتی اداروں میں بہت سے ایسے لوگ جو حق حلال کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں. آف کورس سارے کرپٹ لوگ نہیں ہیں, بہت سے لوگ آنیسٹ لوگ بھی ہیں. ہم بہر طور ہندوستانی مسلمانوں سے کہیں بہتر ہیں. آپ ان دنوں کو اگر 15 سال بعد کی میں بات کرتی ہوں, شبانہ اعظمی, جاوید اختر, ون آف دا گریٹ رائٹر ان انڈیا, آپ ان کی نظموں کو سنیں جو وہ انڈیا کے بارے میں اس وقت لکھ رہے ہیں. آف کورس اٹ از دیئر کنٹری, وہ لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کا ملک ہے ہندوستان, انہوں نے اپنی زندگیوں کو وہاں پہ بتایا ہوا ہے, مگر جو ان کے گلے شکوے ہیں, یعنی جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں, یہ تو پھر وہی لوگ جانتے ہیں. تو بہرحال ہم ہندوستانی مسلمانوں سے کہیں بہتر ہیں اور پرآسائش زندگی بسر کر رہے ہیں. چھوٹی سی اقلیت ایسی ہے جو امید کا دامن نہیں چھوڑتی. اب اس پورے آرٹیکل میں جو ایمفسائز کیا گیا ہے وہ امید کے اوپر کیا گیا ہے. سماعت فرمائیے. مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ مجھے بھی بے شمار شکایتیں ہیں, عام لوگوں سے زیادہ شکایتیں, لیکن میں فیشن کے طور پر ہر شے میں کیڑے نہیں نکالتا. ان میں سے بیشتر کیڑے پاکستان کی مختلف پرابلمز میں, یہ کیڑے ہم پاکستانیوں نے خود ڈالے ہیں. میرا تجربہ ہے کہ کم از کم ان دنوں ہمارا بجلی کا محکمہ, یہ 15 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم, بجلی کا محکمہ پہلے سے کہیں بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے. حالیہ بارشوں میں بجلی کی فراہمی میں تھوڑا تعطل پیدا ہوا. میں نے بھی پورا ایک دن بنیان اور نکن پہنے ننگے فرش پر اخبار کا پنکھا, بتی چلی گئی ہوگی نا ایسے کر کے پنکھا جل رہے تھے, تو کہتے ہیں میں نے بنیان پہن لی, ساتھ نکر پہن لی, اور پورا دن اخبار کا پکھا بنا کے پکھا جلتے گزارا. لیکن مجموعی طور پہ بجلی کی فراہمی میں تسلسل رہا, یعنی بتی گئی ضرور, پرابلم ضرور آئی, مگر پھر بھی تسلسل رہا. ہاں ہمیشہ تو نہیں, لیکن اکثر اوقات بجلی کی خرابی کی شکایت لکھوانے پر عملہ خرابی دور کرنے کے لیے عملہ پہنچ تو جاتا ہے. اگرچہ لاہور کی بارشوں کے بعد میرے دونوں فون تقریباً 6 دن بند پڑے, لیکن اس محکمے کا قصور نہ تھا. کیونکہ پانی اتنی بارشیں ہوئی تھی کہ پانی نے کیبلز کو ڈبو کے رکھ دیا تھا. تو مگر محکمے کو جب کال کیا تو ان کے امپلائیز نے ہر طرح سے مدد کی. پانی میں ڈوبی ہوئی تاریں, ٹیلی فون کی خرابی کی شکایت کرنے پر ان کا عملہ پہنچ گیا. لیکن ہم کبھی بھی عملے کی یہ جو اچھی کارکردگی ہے اس کو سراہتے نہیں ہیں. مسلسل سے تارر لکھتے ہیں کہ میری بیگم جو صرف 4 ماہ اپنی بیٹی کے ہمراہ امریکہ میں رہ کر مزید پاکستانی ہو گئی, ان کو کہنا ہے کہ فلوریڈا جیسی ریاست میں بھی بجلی چلی جاتی ہے اور فون بند ہو جاتے ہیں. کبھی لاہور کی شدید گرمیوں میں آپ نے ٹریفک کنٹرول کرنے والے سپاہیوں کو دیکھا کیسے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, پسینے سے شرابور, دھوپ میں کیسے کار والوں کی منتیں سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں, سر ذرا رک جائیے ادھر کی ٹریفک گزر جانے دیں, مگر سر تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے. سر جی اپنی ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے یہ جو بیچارے ٹریفک کنٹرول والے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو کاکا سپاہی کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو پیٹو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور نہ معلوم کیا 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 کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل مستنصر حسین تار لکھتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ رشوت خور بھی ہیں تو بے شک ان کو جوتے لگائیے, لیکن کبھی ایسے فرض شناس اور ایماندار ٹریفک کے سپاہی کو بھی تھینک یو ضرور کہیے گا. لکھتے ہیں کہ پرلطف بات یہ ہے کہ کسی محفل میں اگر 7-8 لوگ مصروف گفتگو ہوں, ظاہر ہے ان میں کاروباری بھی ہوں گے, دانشور بھی ہوں گے, سرکاری اہلکار بھی ہوں گے, ملازم اور کوئی چھوٹا موٹا سیاستدان بھی ہوگا. بس جی یہ سارے کے سارے مل کر پاکستان کی موجودہ صورتحال پر ناک بھوں چڑھا رہے ہوتے ہیں, او فلانا چور ہے فلانا چور ہے فلانا, ان کو اپنی چوریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہر ایک کے بیچ میں, اپنی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ پاکستان کے نظام میں یہ جتنے لوگ پاکستان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اس نظام میں وہ 100% برابر کے شریک دار ہوا کرتے ہیں, کیسے وہ اپنے آپ کو مبرہ کر کے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. مستنصر حسین تار اور آگے لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسے بزرگوار سے واقف ہوں جنہوں نے اپنے زمانے میں, اب یہ سننے کی بات ہے, مستنصر حسین لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں گو کہ انہوں نے اس کا نام نہیں لکھا, جنہوں نے اپنے زمانے میں پاکستان کو بیچ کھایا. کوئی بندہ قریب سے بھی گزر جاتا تھا تو اسے رشوت کے بغیر گزرنے نہیں دیتے تھے, اور اب ریٹائر ہو کر پاکستان کی زبوں حالی پر پہروں آنسو بہاتے ہیں, حکومت کو کوستے ہیں, صدقہ خیرات تو وہ بہت کرتے ہیں, مذہبی کتابچے بھی چھاپتے ہیں اور دوستوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں. مستنصر حسین تارر لکھتے ہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شکایتیں کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اقلیت ہی صحیح, امید رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور جب ہوپ اور امید ہوتی ہے تو وہ یقیناً بر ضرور آیا کرتی ہے, امید پوری ضرور ہوا کرتی ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو امید کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی ہوپ فل ہوتے ہیں چینج کے لیے, ان کے اپنے دل صاف ہوتے ہیں, وہ بالکل میری پھپھی نورا کی مانند ہیں. پھپھی نورا, تب تو میں جب بچہ تھا نا میں ان کو بوڑھی پھپھی سمجھتا تھا, لیکن آج جب میں اس عمر میں پہنچا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تھیں تو ان پڑھ اور دنیا سے ناواقف, مگر روشنی اور امید کا پہلا سبق, روشنی اور امید کا غور کرنے کی بات ہے کہ گو کہ وہ ان پڑھ تھیں, دنیا میں باہر نہیں جاتی تھیں, مگر مستنصر حسین تارڑ جیسا انسان لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں روشنی اور امید کا پہلا سبق جو تھا وہ پھپھی نورا سے سیکھا تھا. پھپھی نورا میری سگی پھپھو نہ تھیں بلکہ برادری کے حوالے سے وہ ہم سے تعلق رکھتی تھیں. میں ان دنوں شاید 4-5 سال کا تھا جب وہ ہمارے گھر آئیں اور ایک بڑا ہی عرصہ ہمارے گھر ٹھہری. مجھے نہیں یاد کہ وہ گاؤں چھوڑ کر ہمارے ہاں لاہور آ گئی تھی, کیوں آئی تھی, شاید ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا, اگر تھا تو ان کی کفالت نہیں کرتا تھا, یا شاید میرے ابا جی یا مامو جان کو ان پر ترس آ گیا اور وہ اپنے پاس لے آئے. پھپھی نورا بڑی گوری چٹی تھیں, آنکھیں نیلی تھیں. ہمارے گھر آتے ہی انہوں نے گھر کے بیشتر کام کاج, حالانکہ وہ بوڑھی تھیں مگر انہوں نے بیشتر کام کاج سنبھال لیے, اور ابا جی اگر ان کی بزرگی کو مد نظر رکھتے انہیں کہتے تھے پین جی کی ضرورت ہے, تسی کام نہ کرو, بہو بیٹیاں تو ہیں وہ کام کر لیں گی, آپ آرام کیا کریں. تو پھپھی نورا کہتی تھی رحمت خان تم خود تو کہتے ہو کہ تمہارا اپنا گھر ہے, तो फिर अगर मेरा अपना घर है तो मुझे काम काज क्यों ना करने दो, बेकार बैठकर रोटियां तोड़ती रहूंगी, अपना आप भी बोझ हो जाएगा। फूफी नूरा, जब ये मुस्तनसर हुसैन तारड़, जैसे उन्होंने इसमें आर्टिकल में लिखा कि इनकी उम्र 4-5 साल थी जब ये फूफी नूरा इनके घर आके ठहरी थी, लिखते हैं कि फजर के वक्त उठती थी, नमाज के बाद घर के कामों में मशगूल हो जाती थी और फूफी नूरा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। सफाई करते, बर्तन धोते, हांडी पकाते, बारीक लबों पर एक तमानियत भरी मुस्कुराहट खेलती थी। सहन की दीवार के साथ जो मंडेर थी उनकी घड़ी थी। बात और करने की है, सहन की मंडेर के साथ अब घड़ी क्यों थी? कि जब सूरज नहीं होता तो फजर की नमाज का वक्त होगा, जब सूरज ढलना शुरू हुआ तो 12 बजे के बाद जोहर की नमाज का फर्क, जब साया इतने तक पहुंचा तो असर की नमाज हो गई और फिर मगरिब की नमाज हुई। और फिर ये जो घर की दीवार, गो के वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी मगर वो कहती हैं, कहते हैं कि सेन की दीवार के साथ जो मंडेर थी उनकी घड़ी थी, इस पर उतरती फिर बुलंद होती, धूप से अंदाजा लगा के वो अपनी नमाज अदा करती थी, हांडी चढ़ाने के वक्त का तयन भी वो इसी तरह से करती थी। इसी मंडेर पर मुद्दतों से खाली गमला रखा था। अब ये बात है कहानी गौर से सुनने की, जिसमें आती है उम्मीद, जिसको हम कहते हैं होप। कहते हैं कि इस मंडेर के साथ एक गमला रखा था जिसमें सवाए मिट्टी के और कुछ भी नहीं था। किसी जमाने में अब्बा जी मोतिये या हार सिंघार का कोई पौधा लाए होंगे जो कुछ अरसे के बाद शायद धूप की शिद्दत से सूख गया और अब खाली गमला मंडेर के ऊपर पड़ा हुआ था, उसमें पौधे का तो नामो निशान भी नहीं था। अब वो कहता है घर में हम सारे थे मगर किसी में इतनी जहमत नहीं की कि उस मंडेर से वो जो खाली गमला है उसको उतार लिया जाए, किसी ने भी नहीं उतारा या हम उसको फेंक देते। फूफी नूर बीबी, ये रूटीन थी कि वो रोजाना धूप डलते इस खाली गमले को जो कि घर की दीवार की मंडेर पर पड़ा था नहायत एहतमाम से पानी देती। घर वाले फूफी नूरा का मजाक उड़ाते थे, फूफी नूरा खाली गमले को इतनी बाकायदगी से पानी देती हो, ना इसमें कोई फूल है ना इसमें कोई बूटा है, बस मिट्टी है। तो फूफी नूरा जवाब देती थी और मुस्कुराती थी। गमले को पानी देने से बाज ना आई, उन्होंने मुझे भी इस तहरीक में शामिल कर लिया। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि मुस्तनजर हुसैन तारड़ की उम्र जब तब 4 साल या 5 साल की थी। कहते हैं कि फूफी नूरा ने मुझे भी इस तहरीक में शामिल कर लिया। तहरीक क्या थी कि रोज असर के वक्त पौधे को पानी देना, उसमें कोई पौधा वौधा नहीं लगा हुआ था मगर बच्चे को फूफी नूरा ने पीछे लगा लिया कि इसमें पौधा निकलेगा, इसमें फूल निकलेगा, फिर इसमें से हम फल निकलेंगे और फिर उन फलों को हम खाएंगे। मुझे दोस्त बना लिया फूफी नूरा ने और हम दोनों, मैं और फूफी नूरा मिलकर इस खाली गमले को रोज असर के वक्त पानी देते। ये कहने की हाजत नहीं कि घर वाले उन्हें थोड़ा उम्र रसीदगी के बायस खपती समझते थे, बूढ़ी थी ना, बड़ी उम्र में तो अक्सर लोग अच्छे भलों को खपती समझने लगते हैं। खाली गमले को पानी देते हुए हमेशा मुझसे कहती थी, मुस्तनसर ये लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तुम देखना, तुम देखना मुस्तनसर, तुम देखना एक ना एक दिन इस गमले में फूल आएंगे, फिर फल लगेंगे और फिर हम दोनों मिलकर वो फल खाएंगे, मुस्तनसर तुम देखना ऐसा होगा जरूर। ये थी उनकी उम्मीद और ये थी उनकी होप। मुस्तनसर से अंतारा लिखते हैं कि मैं उनकी बातों पर यकीन कर लेता, अपने तस्वुर में इस गमले में पैदा होने वाले आम संतरे केले खाने लगता। फिर मुझे नहीं मालूम फूफी नूरा वापस गांव चली गई। उनके जाने के बाद मैंने खाली गमले को पानी देने की रवायत जारी रखी। अब फूफी नूरा तो चली गई थी, पहले घर वाले फूफी नूरा का मजाक उड़ाते थे, अब वो मेरा मजाक उड़ाते थे। लो अब ये भी फूफी नूरा का नायब आ गया, इस गमले में कुछ नहीं निकलना, खाली है, मिट्टी से भरा हुआ, कुछ नहीं निकलना। मगर मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं कि मैंने फूफी नूरा की बात पे यकीन कर लिया था, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। यकीनन फूफी नूरा झूठ नहीं बोलती थी, इसमें से पौधा भी निकलेगा, इसमें से फूल भी निकलेंगे और इसमें से फल भी निकलेगा। और फिर साहब फिर जाने क्या हुआ कि उस खाली गमले में एक बूटे के दो पत्ते नमूदार हो गए, शायद किसी परिंदे की बीट का कोई बीज था, बीट के साथ कोई बीज था जो मिट्टी में मिलकर फूटा। दिनों में वो बूटा बुलंद हुआ, फिर इसके पत्तों में से एक जर्द फूल झांकने लगा। मैंने कहा नहीं था, पप्पी नूर बीबी झूठ नहीं बोलती थी। अब वो इस पूरे के पूरे मामले को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। ये 15 साल पुराना आर्टिकल है। लिखते हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसी पप्पी नूर बीबियों की जरूरत है, वो हमारे आसपास, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। ऐसे लोग जो पप्पी नूर बीबी की मानिंद पाकिस्तान के खाली गमले को पानी देते रहे इस उम्मीद पर कि इसमें आखिर फूल खिलेंगे। मेरा यकीन है कि फूल खिलेंगे, मेरा यकीन है कि फूल खिलेंगे, क्योंकि पप्पी नूर बीबी झूठ नहीं बोलती थी। बहुत खूबसूरत आर्टिकल। आई विश कि आप इसको अपनी ऐसी तहरीर को अपनी लाइब्रेरी में या अपनी याददाश्तों में शामिल कर सकें। इट्स सो वेरी ब्यूटिफुल वॉट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव, माइंड ऑफ मैन कैन अचीव। Rather than relying on others, we have to put our share in. सबसे आसान बात है किसी चीज को गलत कहना, और सबसे मुश्किल काम है अपने आप में खामी तलाश करके उस खामी को दुरुस्त करना। बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके तवस्सुत से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नान कबाब के बारे में मैं आपको बताती चली जा रही हूं कि नान कबाब की ग्रैंड ओपनिंग नहीं सॉफ्ट ओपनिंग हो गई भी, आप आज भी बल्कि अगर चाहें तो नान कबाब से ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी 6 लोकेशंस हैं। इनकी 2 लोकेशन टोरंटो में है, 2 लोकेशन स्कारब्रो में है, 1 मार्कम में। नाउ दे ओपन अ 6th लोकेशन इन ब्रैम्पटन। अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा करे। 19 एनेगम बुलेवार्ड, ये जहां पे सेनीफ्लेक्स है ना, नॉर्थ ऑफ 401 ऑन हाईवे 10, वहीं पे आपको मिलेगा। और अगर आप $30 मिनिमम $30 का ऑर्डर करते हैं तो आप $10 ऑफ आपको मिलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रब्ता कीजिए नान कबाब से। इनकी वेबसाइट पे चले जाइएगा, नान कबाब, नान कबाब, नान खबोब, नान खबोब, फहीम होते हैं वहां पे, और आप स्पेशल लीजिएगा। बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर मिसेस सागा। बहुत शुक्रिया जनाब कौकब जावेद का भी, मॉर्गेजेस की दुनिया के साथ वाबस्ता कौकब जावेद। 416-454-6065 उनका नंबर है। और अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, रीफाइनेंस करवाने, आप नए आए हैं, इवन अगर आपको वो क्या होते हैं फाइनेंसर्स की जरूरत है, तो ही डज हैव फाइनेंसर्स एज वेल। हमारे आज के प्रोग्राम को कैलेडन सब्जी फार्म ने भी तावन दिया। अगर आपने फ्रेश वेजिटेबल हरियां मिर्चा जो तुम लड़िया ने ताजियां, तो मैं आपको जुकीनी पका के तो खाते ही हैं सारे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कच्ची खा के देखिएगा। लो भाई सरबत बच्चे, थैंक यू वेरी मच। और जमशेद जिक्रिया, वालेकुम असलाम, थैंक यू सरबत। देखिए आप लोग जो लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं आप अपने कमेंट जरूर दिया कीजिए। और अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा मुस्तनसर हुसैन तारड़ का, मेरा दिल करता है इसके मैं फोटो शॉट लेके आप लोगों के लिए छोड़ूं जरूर। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल। वी हैव टू ब्रिंग चेंज इन आवर सेल्फ। यस एनीवेज, कैलेडन सब्जी फार्म पे आपने जाना जरूर है। किधर भला? एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड के इंटरसेक्शन पे कैलेडन सब्जी फार्म। सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां इनके फार्म की हासिल कीजिएगा। लें जी एक मुलाकात की तरफ लेकर के बढ़ते हैं। और फिर मैंने आपको 2 गाने भी और सुनाने हैं, बहुत मजे के गाने, बहुत खूबसूरत गाने। एक गाना मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा था, मैंने फिर कहते सोचा, मैंने कहा आज तो मुझे ये गाना नहीं प्ले करना चाहिए। क्यों नहीं प्ले करना चाहिए? क्योंकि आज तो ठंड है, 20-21 टेम्परेचर है, ठंड लग रही है ना, ठंडा ठंडा मौसम है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना गाना चाहिए। अच्छा गाना है वो वाला, मुझे अच्छा लगता है वैसे, मैं वो भी सुनाऊंगी आपको। मगर आज तो ठंड है, मगर वो गाना जो मुझे याद आ रहा था, शिक्र दोपहरे पिपली दे थले मैं छणकाइयां वंगा, मादाम नूरजहां की आवाज में वो गीत भी मैंने आपको सुनाना है। मगर उससे पहले मुलाकात किससे करवा रहे हैं माजी जमान?
मोहम्मद सिद्दीक साहब फ्रॉम ऑल्ड सॉल्यूशंस।
अच्छा, आप सारे सदीकों को आज क्यों लेके आ रहे हैं?
सारे
आप इतने पहले आप
सदीक का मतलब नहीं, नहीं, है सदीक का मतलब ये है कि सच्चे लोग जो
आप सारे एस को आज लेके जा रहे हैं। पहले आप लेके आए
एस स्टैंड फॉर सॉलिड।
सॉलिड, ओके। पहले आप लेके आए
सॉलिड सच्चे सिद्दीक, सारे सच्चे हैं।
पहले आप लेके आए शिराज को, फिर आप लेके आए शहबाज को, अब लेके आए सदीक साहब को। मतलब व्हाट इज दिस मैन?
इसके बाद मैं देख रहा हूँ और कौन ऐसे आपका
ऑल डेट सॉल्यूशन से मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपको कोई तंग नहीं करेगा। फर्स्ट कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और ही विल वर्क फॉर यू नॉट फॉर द क्रेडिटर्स. यस, इसमें ये गेमिक भी है. यस, दिस गेमिक इज ऑल्सो देयर. ही इज अ सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर इन द बिजनेस फॉर लास्ट 15 ईयर्स सिंस मुझे नहीं पता, शायद उससे भी पहले से हूं, बट वी साजो आवाज एंड 770 वी आर एडवर्टाइजिंग हिम फॉर लास्ट 15 ईयर्स विदाउट एनी ब्रेक. Credit certified credit counselor Mohammed Siddiq, and I did not have even a single complaint. Ji Majid bhai.
और जी जैसे आपने कहा कि ऑल्डर सॉल्यूशंस के नाम मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं. फोन नंबर इनका 416-671-0577. सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सर कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. आप कैसे हैं?
और मतलब आपने रोजा रखा हुआ?
रोजे भी रखते हैं इंशाल्लाह.
बोले तो ऐसे थे जैसे रोजा लगा हो.
नहीं, ईद से पहले रोजे रखते हैं लोग, छोटी ईद से पहले. बड़ी ईद आ रही है तो बड़ी ईद से.
यार मैं अपनी बहन के पास रह रही हूँ, मैंने ईद के 3 रोजे सुने थे. मतलब वो तो भूखा रख रख के मारे ही मुझे, कहती यार बस 10 रोजे रखने हैं. मैंने कहा अल्लाह का खौफ कर, 3 रोजे रखा दे मुझे, यही बड़ी बात है. कहती नहीं 10 रोजे रखने हैं. मैंने कहा तू वैसे कह दे मैं अपने घर तेरे घर से चली जाऊँ.
हाँ ग्रोसरी कब हो जाएगी
ना? तो हमारी दुआएं हैं उस बहन को.
हमारी दुआएं हैं उस बहन को.
वो भी ऐसी शुतरी है कि आप सोचिएगा, मुझे कहती 10 रोजे रखने हैं. मैंने कहा रे बाबा जी देख बात सुन, 3 रोजे रखा ले, 10 रोजे ना रखा. कहती नहीं 10 रोजे रखने हैं. मैंने कहा ले फिर कमाल है भाई, तू भी
अल्लाह
वैसे ही घर से निकालने के चक्कर में है. वो था ना एक आदमी किसी के घर में गया, तो उसने एक दिन दाल पकाई, 2 दिन दाल पकाई, 3 दिन दाल पकाई, 9 दिन दाल पकाई, तो 10वें दिन बसी पूछने का आज क्या तारीख है. वो घर वाला भी परेशान था कि अब ये मेहमान जा ही नहीं रहा, तो मेज मेहमान भी बेचारा परेशान था कि ये कोई और खाना ही नहीं खिला रहा. कहता आज तारीख क्या? कहता दाल की 10 तारीख है. जी मोहम्मद सिद्दीक साहब बताइए आप अपना और अपनी कंपनी के बारे में.
जी भाई यार हम पिछले 20 साल से लोग हेल्प आउट कर रहे हैं. अगर किसी भी वजह से वो कर्जे में चले जाते हैं, चाहे वो कर्जा छोटा हो या कर्जा ज्यादा, अपना पैसा इंटरेस्ट की सूरत में जाया ना करें. गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपको राइट दिया हुआ है कि अगर आप कर्जे में चले जाते हैं, पे नहीं कर सकते, तो आपकी इनकम कम होती है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो आप अपने क्रेडिटर से रिलीफ ले सकते हैं. और उसमें हम आपको गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, इसमें कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कर्जा आपका माफ करवा दें, बाकी छोटी छोटी किस्तों में बगैर इंटरेस्ट के जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करें. मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो घर बैठे डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे नाम पे एसेट्स हैं, घर है, आरएसपी हैं, आरईएसपी हैं या बिजनेसेस हैं, तो मुझे रिलीफ मिल नहीं सकता, या रिलीफ ले लिया तो मुझे दोबारा कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, मेरी मार्गेज रिन्यू नहीं होगी. एक तो मैं बताता चलूं कि हम आपके तमाम एसेट्स और बिजनेसेस को लीगल तरीके से सेव करते हुए आपको डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं. और अगर इसमें आपका क्रेडिट खराब होता है तो हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रिबिल्ड प्रोग्राम में. अगर उसमें आप एनरोल होते हैं तो 6-7 साल तक बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा क्रेडिट लेने के लिए, बहुत जल्द आपको क्रेडिट भी वापस मिल सकता है. घर बैठे कभी भी डिसाइड ना करें, आप कॉल करके फोन पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं. फ्री कंसल्टेशन है, प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है. जितनी बार मेरे ऑफिस में आएंगे फ्री कंसल्टेशन है. हाँ अगर आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अपना केस दें, जो मैं आपसे पहले मीटिंग में वादा करूंगा उसके मुताबिक जब केस आप
जो वादा करेंगे उसके मुताबिक ही आपके केस को लेकर चलेंगे. कोई अगर आप कंसल्टेशन के बाद इफ़ यू गिव इट अ टाइम और तो आप सोचना चाहते हैं तो यकीनन आपको वो भी पूरा मौका दिया जाएगा. मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन के साथ नंबर आप उनको नोट कर लीजिएगा 416-671-0577 617-1057 में स्कारब्रो में डिफरेंट जगहों पे इनका ऑफिस है. और रेवेन्यू कैनेडा और टैक्स और जीएसटी को भी लुक आफ्टर करते हैं. जी 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 मोहम्मद सदीक साहब आप कैरी ऑन कीजिए.
सीआरए के डेट अक्सर लोगों के जेन में ये कंसेप्ट है कि अगर मैं कोई जीएसटी ओ करता हूँ या इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो मैंने पूरा का पूरा पे करना है, इसका रिलीफ नहीं मिल सकता. नहीं, बिल्कुल आपको उसमें भी रिलीफ मिल सकता है, चाहे वो बिजनेस का जीएसटी है, पर्सनल इनकम टैक्स है, बिजनेस का लोन है बीडीसी से लिया हुआ है या किसी बैंक से लिया हुआ है, किसी किस्म का भी कर्ज आप पे है, चाहे वो बिजनेस का है या पर्सनल, उसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपका कर्जा सेटल कर सकते हैं. उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कंज्यूमर प्रपोजल है, बैंकरप्सी है, इनफॉर्मल प्रपोजल है, क्रेडिट काउंसलिंग है. अब डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन किसको सूट करेगा, ये भी जब आपका केस मैं रिव्यू करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सूट करेगा. नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं. मुझे कॉल करने का फायदा आपका ये है कि एक तो हम अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं, हम बैंक के लिए काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रिलीफ दिलवाएं जो हो सकता है लॉ के मुताबिक. दूसरा, अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो इस चीज की मैं गारंटी करता हूं कि मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा. जो वादा करूंगा उसके मुताबिक जब केस आपका अप्रूव हो जाएगा, अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपकी पेमेंट शुरू होगी. उससे पहले कुछ आपने पे नहीं करना. और अगर इसमें आपका क्रेडिट खराब हुआ तो हम आपको एनरोल करेंगे क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में. बहुत जल्द आपको क्रेडिट भी वापस रीबिल्ड करवा के देंगे. हमारी लोकेशन स्कार्बरो में है, मार्का मलेजमर के पास, इटोबिको में हेड ऑफिस है, किपलिंग रेक्सल के पास, मिसागा में है, टॉमकिन डंडास के पास, ब्रैम्पटन में है, डिक्सी ब्रेड के पास. जो भी लोकेशन आपको नजदीक पड़ती है आप कॉल कर सकते हैं 416-671-0577 पे अपॉइंट बुक करें. मैं खुद आपके साथ बैठूंगा, आपका केस इन डिटेल रिव्यू करके बताऊंगा कि क्या आपको रिलीफ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. अगर लेना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन आपको सूट करेगा, वो क्यों सूट करेगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे. अगर क्रेडिट खराब हुआ तो कितनी देर में हम आपको वापस बैक टू ट्रैक पे लेके आएंगे. और उसके बाद ये देखिए आप रिव्यू कर लें और फिर देखेंगे आपको रिलीफ लेना है या नहीं. नंबर है 416-671-0577. वेबसाइट है www.alldebtsolutions.ca पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं.
बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सदीक साहब. 416-671-0577. एक गाना है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोक के जमाना चाहे रोक के खुदाई तुमको आना पड़ेगा. गा सक
मैं?
हाँ, और मैं
बिल्कुल, क्यों नहीं
गाओ. गाओ
यार, सब फोन पे क्यों गाने बुलाती हैं?
फोन पे नहीं, रेडियो पे.
फोन पे हूँ ना मैं, तो मैं स्टूडियो में आऊंगा, वहाँ आके को बैंड बाजे बजाएंगे और वहाँ में गाना गाऊंगा.
चलो जी, कल हम आपका इंतजार करेंगे. टुमारो इज आर प्रोग्राम. कल
वादा नहीं है, मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ. कल फ्राइडे है.
बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक. All Debt Solutions, he will work for you. Consultation ki koi fees nahi. 416-671-0577. Sir, aapka bahut shukriya. Bahut shukriya. बहुत शुक्रिया ऑल डेट सॉल्यूशन से मोहम्मद सदीक. और साहब, अगर आपको इंटरनेट की सर्विसेज चाहिए तो गो रोश के बारे में, ये अब रोग कहते हैं ये रोग, मगर $39 $39.99 में अगर आप अनलिमिटेड इंटरनेट लेना चाहते हैं तो यू हैव टू डायल 647-273-3291. हम एक एडवर्टाइज कर रहे हैं चिली केक्स के बारे में. चिली केक्स ये डेयरी एंड डिक्सी के इंटरसेक्शन पे चिली केक्स है. चिली केक्स ने मुझे बताया है कि इस सैटरडे को, यस बिल्कुल आपने सही सुना, इस सैटरडे को टू पीस चिकन कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है. मगर आपको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा. हम उनको कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिएगा. वो कहते हैं कि जुलाई नहीं साहब, ये जो कमिंग सैटरडे को ये दे रहे हैं चिली केक्स वाले कॉम्प्लीमेंट्री. दे वॉन्ट एवरीबडी टू कम एंड टेस्ट देयर फ्लेवर्स. एंड वो कहते हैं कि आप एक दफा हमारे मेहमान बने, हम आपको गारंटी देते हैं कि यू विल लव द टेस्ट एंड फ्लेवर एंड द क्वालिटी ऑफ फूड. 416-444-2267 उनका नंबर है. लीजिए साहब, गीत जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, शिक्र दोपहरे पिपली ते छरे मैं छणकाया मंगा, मादाम नूर जहां की आवाज में. और ये साहब फिल्म थी लाडो, 1966 में ये फिल्म बनी थी. और मास्टर अब्दुल्ला वो कहते हैं कि इस गीत को फिल्म लाडो के लिए लिखा गया था 1966 में. इसके जो अल्फाज थे मंजूर झल्ली के थे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग ऑफ इट्स टाइम. एंजॉय. शिक्र दोपहर पिपली दे थले मैं छणकाया वंगा. समाज फरमाई. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کوکب جاوید آئے مگر میں نے آپ کو ایک اور گانا بہت پیارا سنانا ہے, شکر دوپہر پپلی دے تلے میں چھنکائیاں بنگا. گیت پیارا لگا آپ کو, یقیناً اچھا لگا, ون آف دا بیسٹ سانگ آف اٹس ٹائم. ایک اور گیت بھی بڑا پیارا جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی, مگر ایک کوکب جاوید صاحب کا جو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اگر آپ نو میٹر فیور نیو کمر ان کینیڈا, نئے آپ آئے ہیں یا اگر آپ کوئی ایگریکلچر لینڈ لینا چاہتے ہیں تو ایون اس میں سٹرکچر نہیں بھی بنا ہوا, ہی کین ارینج یور مارگیج. پرائیویٹ فائنینسرز فنڈرز بھی ان کے پاس موجود ہیں, تو آپ رابطہ کیجئے جناب کوکب جاوید سے. آپ کی کنوینئنس کے مطابق ورچوئل میٹنگز آپ کو کریں گے, اینڈ اف ہی سیز یس اٹ مینز ہی ول ارینج یور مارگیج آپ کو ایٹ دی 11th آر, جو کہتے ہیں سلیپ لیس نائٹس نہیں ہوں گی. کوکب جاوید کا نمبر 4164546065. کوکب جاوید صاحب السلام علیکم, اینڈ ہاؤ آر یو سر جی؟
وعلیکم السلام. میں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں ماجد بھائی؟
ہم بھی ٹھیک ہیں, ہم بھی ٹھیک ہیں.
وعلیکم السلام.
تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کو سب سے اچھا گانا کون سا لگتا ہے؟
مجھے جی او کینیڈا.
نو مائی گاڈ, آخر کوئی کبھی تو گانا گاتے ہوں گے نا آپ؟ مجھے تو نہیں بھی گانا گاتا تھا. میں آج گا رہی تھی اپنے ابا جی کو یاد کری تھی, وہ گانا تھا گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. بڑی خوبصورت غزل ہے مہدی حسن کی آواز میں, اور گو کہ مجھے نہیں گانا گانا آتا بٹ میں پوری لے میں گایا اس کو مزے سے. باتھ روم سنگر تو کوئی میرے جیسا ہو.
اچھا
ہاں
اچھا
میں
آپ کو ایک
فنی میں یہ کہ میں گا رہی تھی گانا تو بہن میری مجھے کہتی ہے اللہ کے نام ہر وقت پڑھا کر. میں نے کہا او مائی گاڈ, وہ بھی میری ایک میری بڑی بہن ہے بڑی پیاری سی. اچھا سر اپنا تعارف کرائیے گا, اپنی کمپنی کا تعارف کرائیے گا, اور بتائیے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم, اور اگر آپ سے رابطہ کیا جائے کیوں کیا جائے.
جی ویری اسٹریٹ فارورڈ ویری سمپل, میں جی بالکل سیدھا سیدھا سمپل سمپل کام کرتا ہوں. میں جو آپ کو کہتا ہوں اس کو میں پورا کرتا ہوں. میں آپ کا ٹائم بچاتا ہوں. ٹائم اگر آپ نے بچانا ہے سیو کرنا ہے, پریشان نہیں ہونا آپ نے. آپ کی کال آپ چاہتے ہیں کہ میں جب آپ مجھے کال کریں میں آپ کی رائٹ اوے کال پک کر لوں, تو وہ ذہنی سکون کے لیے آپ مجھے ضرور کال کریں. یہ سب سے بڑا ریزن ہے جو میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ٹائم میرا پرومس ہے کہ جو ٹائم فیکٹر ہے کلوزنگ کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اگر آپ کی فائنینسنگ کر سکتا ہوں, چاہے وہ فرسٹ مارگیج ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے, میجر بینکس کے ساتھ ہے یا پرائیویٹ لینڈر کے ساتھ ہے, ان بوتھ کیسز دونوں صورتوں میں میرے پرومس میری کمٹمنٹ ہمیشہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. بیسٹ انٹرسٹ ریٹ لے کے دوں گا آپ کو, کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ فیڈ بیک دوں گا کہ ہم کہاں پہ ہیں کیا سچویشن ہے. یہ نہیں کہ آپ سے میں نے سائن اپ ہو گئے جی ٹھیک ہے جی میں کر رہا ہوں آج بتاؤں گا یا مہینے بعد بتاؤں گا, وہ کام میں نہیں کرتا ہوں. یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ آپ مجھے اس ریزن ان ریزنز کی وجہ سے مجھے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ مارگیج ہے یا میجر بینکس کے ساتھ. ویری سموتھ ویری پلیزنٹ ایکسپیرینس.
سر بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بینک سے ڈائریکٹ رابطہ کروں گا تو آئی پرابیبلی ول بی موسٹ or in safer hands. So why it is important to contact a person like yourself rather than contacting directly to the banks?
بڑا یہ بھی بڑی ایک اسٹریٹ فارورڈ سی چیز ہے. دیکھیں جی اگر تو آپ کا بینک آپ کو اگر آپ فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہیں, نیو کمر ٹو کینیڈا ہیں, آپ کو ری فائنانس چاہیے, آپ کو سیکنڈ مارگیج چاہیے, فرسٹ چاہیے, آپ کی جو بھی ضرورت ہے, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی برانچ کو اپنے بینک کو کانٹیکٹ نہ کریں کہ میں بیسٹ ہوں. میں یہ کبھی کلیم نہیں کرتا ہوں کہ جی آپ میرے پاس آئیں میں یہ کر دوں گا, لیکن میں سٹاف کو روکوں گا بھی نہیں کہ آپ بینک کے پاس نہ جائیں. لیکن یہ تو ایک کامن سی چیز ہے, ہمیں بینکس کے بارے میں بھی پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہ کمپلینس ہیں اس جگہ پہ. لیکن میں یہ کہوں گا اگر آپ کسی وجہ سے خوش نہیں ہیں اپنی برانچ سے, آپ کی برانچ آپ کا بینک کام نہیں کر رہا پراپرلی, تو آپ مجھے رائٹ اوے کال کر لیں. جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ میں کر کے دے دوں گا. جو میرا کمٹمنٹ ہوگی ٹائم کی اور جو آپ کو چاہیے فرسٹ مارگیج سیکنڈ مارگیج تھرڈ مارگیج بینکس کے ساتھ اور اگین پرائیویٹ لینڈرز کے ساتھ.
اپنا نمبر دیجئے سر.
سر جی او سوری منو, پہلے مجھے یہ تو بچایا نا, بتائیں نا یہ گھنٹیاں کون بچا رہا.
یہ گھنٹیاں میرے گھر کی بج رہی ہیں, اب میں گھر کی سرویلنس شروع کر دی ہے نا.
او ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. جی میرا نمبر ہے جی
4146046065. اور اگر آپ کو نمبر نہ نوٹ کر سکے تو گیو می اے کال اینڈ آئی ول پرووائڈ یو وتھ دس نمبر. یہ ہماری ویب سائٹ ewaz.com پہ ہے تو یہ سن سکتے ہیں آپ, نمبر دیکھ سکتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. بھائی میں بھی ایویں نہیں جانا, ایک گانا تھا سونا قسم ایڈا سونا گانا ہے, ایڈا سونا گانا ہے نا. اور یہ گیت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ. آپ اس کی کو انجوائے کیجیے گا اور اگر مزہ آ جائے نا تو پھر مجھے کال ضرور کیجیے گا. زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی فلم کرانتی تھی آئی بلیو سو فلم کرانتی کا یہ گیت ہے. زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی پیار کر لے گھڑی تو گھڑی, لمبی لمبی عمر یا کو چھوڑو, چھوٹی سی عمر بھی ہو کوالٹی لائف ہو, واٹ ایلس آئی نیڈ, نتھنگ. انجوائے دس بیوٹیفل سانگ.